ओम शांति। आज हम सबके मध्य आदरणीय वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका उर्मिला दीदी जी पधारी हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी जी 1985 से समर्पित रूप से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दीदी जी का परिचय देते हुए हमें अतिहर्ष हो रहा है कि दीदी जी संयुक्त संपादिका ज्ञानामृत मासिक पत्रिका जो हमारे पास आती है, साथ ही साथ सह संपादिका भी रहे हैं त्रैमासिक हरियाली पत्रिका के। आपने अनेक आध्यात्मिक अभियानों में हिस्सा लिया है, भारत एकता युवा साइकिल यात्रा, शिव संदेश रथ यात्रा, महिला सशक्तिकरण अभियान आदि आदि। आपने भारत के अलावा नेपाल और अफ्रीका में भी विशेष ईश्वरीय सेवाओं में अपना योगदान प्रदान किया है। आप अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी हिस्सा लेते आए हैं। आदरणीय दीदी जी की बहुत एक अच्छी विशेषता है, उनकी लेखनी बहुत चमत्कारिक है। आप एक बहुत कुशल लेखिका भी है। आपके लेख इतने परिवर्तनकारी होते हैं और आपने अमृत संचय नाम के पुस्तक भी लिखे हैं जिनके भाग एक और दो प्रकाशित हुए हैं। तो ऐसे कुशल लेखक और कुशल वक्ता आज हमारे बीच में है और हम सबको दातापन की स्थिति से भरपूर करने हमारे मध्य पहुंचे हैं आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भक्तिमत में भगवान की महिमा में कहते हैं कि वो दाता है, वरदाता है, विधाता है, और ये भी कहते हैं कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, अर्थात देने वाला केवल वो एक है, बाकी सब लेने वाले हैं। और ये भी कहते हैं देने वाला देता थकता नहीं है, लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। तो ये महिमा हम सब के बाबा की है, शिव बाबा की है, जो अवधर दानी है, जिसके भंडारे सदा भरपूर है। तो जैसा वो खुद है वैसा हम बच्चों को भी देखना चाहता है, इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ये अंतिम समय है, सब आत्माओं की बैटरी खाली है, सब आत्माएं कोई न कोई नया सहारा ढूंढ रही है कहीं से कुछ मिले, और आप बच्चों के पास तो अखुट भंडार है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है, अनेक शक्तियां हैं, अनेक गुण हैं। तो आप बच्चे आवश्यकता के समय किसी को एक बूंद भी देंगे तो वो बूंद सागर के समान महत्व वाली होगी। इसलिए निरंतर दाता बनो, देते समय गिनती नहीं करो कि मैंने इतना दिया इतना दिया, और वास्तव में तो देना देना नहीं होता है लेकिन लेना होता है। हम जितना देते हैं उसे कई गुना लौट के हमारे पास आता है। पूरे कल्प में अगर हम आत्माएं अपनी स्थिति देखें तो हम अनादिकाल से दाता हैं। अनादिकाल में हम कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं, तो वृक्ष को शक्ति तो जड़ों से ही मिलती है, पानी मिलता है, भोजन मिलता है, या टिके रहने का आधार मिलता है। तो अनादिकाल में भी हम दाता हैं जिसके कारण ये कल्प वृक्ष खड़ा है, उसके बाद आदि काल में तो हम हैं ही देवता, दो ताज वाले, हमारा नाम ही देवता, देवता माना ही जो दे। और मध्य काल में मंदिरों में हमारी जो यादगार मूर्तें वो तो हैं ही, दाता पूज में उनके हाथ हमेशा ऐसे होते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी को वरदान देते हैं, किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, किसी को मनोबल देते हैं, किसी को मनसा शक्ति प्रदान करते हैं, किसी को शांति की अनुभूति कराते हैं। तो मध्य काल में भी हम दाता हैं। और बाबा कहते हैं संगम युग पर सृष्टि के अंतिम काल में भी आप बते जन जन को बाबा का दिया हुआ ज्ञान वरदान संदेश सुनाते हो। तो इस अंतिम जन्म में भी आप दातापन का कार्य करते हो, दाता बन करके रहते हो। तो आप तो सृष्टि के आदि में भी दाता थे और अंत में भी दाता, सदा ही दाता रहे हो। आपकी नेचर ही दातापन की, अविनाशी दाता। इसलिए बाबा ने कहा कि कभी भी ये संकल्प नहीं करो कि अमुक व्यक्ति दे तो मैं दूं, क्योंकि इसमें तो हम दूसरे व्यक्ति का इंतजार करते हैं कि पहले वो बदले फिर मैं बदलूं, पहले वो कुछ करे फिर मैं करूं, पहले वो मेरी कुछ बात माने फिर मैं उसकी कुछ बात मानूं। इसमें तो सामने वाले को बदलने की भावना, ये तो कंडीशन के साथ देने की भावना है। लेकिन शुद्ध दातापन अर्थात अनकंडीशनल, सामने वाला कुछ करे या ना करे पर मुझे करना, वो बदले या ना बदले पर मुझे बदलना। और जो ऐसा संकल्प करते हैं वो लीडर बन जाते, फिर सामने वाला उनको देख करके बदलता। अगर हम सामने वाले को देख के बदले तो वो हो गया गुरु और हम हो गए चेले। और पहले हम बदले और हमें देख के दूसरा बदला तो गुरु हो गए हम, वो हो गया हमारा फॉलोवर। तो हमको क्या बनना है, गुरु बनना है या चेला बनना है? गुरु बनना है ना। तो इसलिए लीडर बनो, परिवर्तन की जो बागडोर है वो पहले हमें थामनी है। मुझे कहानी याद आ रही है, एक शहर में दो पड़ोसी, उनके आपस में अच्छे संबंध थे। एक का बगीचा था और एक की एक फैक्ट्री थी। तो एक दिन संडे छुट्टी के दिन फैक्ट्री वाले अपनी फैक्ट्री की सफाई की, और लंबे समय से सफाई नहीं की थी तो कचरा बहुत निकला। कुछ कचरा अपने घर के पीछे फेंका, कुछ साइड में फेंका, और कुछ अपने घर के आगे और कुछ अपने पड़ोसी के घर के आगे भी फेंक दिया, क्योंकि कचरा बहुत सारा था। तो पड़ोसी अपने खेत से शाम को लौटा तो उसने देखा कि घर के आगे कचरा बहुत पड़ा है, और पहचान में भी आ गया कि ये कचरा किसका है, ये फैक्ट्री वाले का है। पर वो कुछ बोला नहीं। उस रात तो वो चुपचाप सो गया। अगली मॉर्निंग अपने खेत में गया, बगीचे में गया, गर्मी के दिन थे, बड़े अच्छे मैंगो थे उसके बगीचे में, मीठे मैंगो, तो उसके टोकरे भर के ले आया और उसने पड़ोसी का द्वार खटखटाया। अब पड़ोसी तो डर गया, सोचा ये उड़ाना देगा। पहले भी उसके मन में शंका थी, आएगा आएगा बोलेगा मेरे घर के आगे इतना कचरा डाल दिया। उसने दरवाजा खोला ही नहीं, लेकिन ये खटखटाता ही रहा, रुका ही नहीं। आखिर उसको खोलना पड़ा, और उसने दरवाजा खोलते ही एकदम पूछा, क्या बात? उसने कहा, देखो मेरे बगीचे में मैंगो पके हैं, बहुत मीठे हैं, मैं सबसे पहले आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे सबसे नजदीक तो आप रहती, बाकियों को तो मैं बाद में दूंगा, तो आप लेने से मना मत करना, ये दोनों टोकरे आपके लिए हैं। उसने सोचा क्या था और हुआ क्या, वो पिघल गया। फिर कहता है, आप बड़े अच्छे हो पर मैंने ना एक गलती कर दी, कल फैक्ट्री की सफाई की थी तो ये थोड़ा कचरा आपके घर के आगे आ गया, मैं बाद में उठवा दूंगा। तो ये व्यक्ति मुस्कुराता रहा, मैंगो वाला, कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, देखो जिसके पास जो चीज होती है ना, दूसरे को वही तो देता है। अब आपके पास जो थी वो आपने मुझे दे दी और मेरे पास जो थी वो मैंने आपको दे दी। इसको कहते हैं दातापन का भाव, सामने वाले को बदला लेकिन दाता बन के बदला। उसको अपनी गलती का एहसास कराया अपनी अच्छाई के द्वारा, डांट डपट के नहीं, झगड़ा करके नहीं, बदला लेके नहीं, लेकिन इतना अच्छा बन गया वो, जैसे कहते हैं ना बाबा कि स्वच्छ जल में अपनी परछाई दिखती है, तो उसने अपने अंतमन को इतना स्वच्छ बनाया कि उस सामने वाले को अपनी बुराई अपने आप दिखने लगी और वो बदल गए। तो बाबा कहते हैं कभी ये मत सोचो कि सामने वाला बदले फिर मैं बदलूं। वो अगर जिंदगी भर नहीं बदला तो उसके कारण आप भी अटक गए, आपकी गति भी धीमी हो गई, आपकी यात्रा भी रुक गई। किसी व्यक्ति के कारण हम अपनी मंजिल पे ना पहुंचे। तो बाबा कहती हैं आप चाहे मनसा से दो, चाहे वाचा से दो, चाहे कर्मणा से दो, संगम युग में हर तरीके से दिए गए का पदम गुणा फल मिलता है। अब जैसे आप सब भाई बहने मान लीजिए 1,500 है, जब मैंने बोला ओम शांति तो मैंने तो एक ही ओम शांति बोला ना, पर मुझे ओम शांति ली कितनी 1,500, मतलब एक दिया तो कितना गुना हो गया। अपन अमृत के लिए योग लगाते हैं, एक संकल्प करते हैं कि विश्व की 750 करोड़ आत्माओं को या 800 करोड़ जितनी भी हैं सबको शांति मिले। अपन ने एक बीज बोया शांति का, लेकिन उसका फल कितना हो गया, विश्व की सारी आत्माएं बदले में हमको भी शांति देंगी। ये तो सूक्ष्म है, जो देंगे वो वापस आएगा, जितनों को देंगे उतनों को उतनों से वापस आएगा। तो एक संकल्प शांति का किया हमने, एक बीज बोया और देखो कितना गुना वो फलीभूत हो गए। पूरे 5,000 साल हमें शांति की कमी नहीं रहेगी, अंतिम जन्म में भी हम इतने अशांत नहीं होंगे, क्योंकि हमने इतनी शांति आत्माओं को बांटी है और वो बीज फलीभूत होता ही रहेगा अंतिम जन्म तक। और बाबा ने एक मुरली में तो ये कहा था कि आप जितना टॉवर ऑफ साइलेंस में बैठ करके संकल्प करते हो, माना परम धाम में बाबा से कंबाइंड होके जब संकल्प करते हो तो उसका इतना भारी फल मिलता है, क्योंकि वो ऊंचे से ऊंचा स्थान है, ऊंचे से ऊंचे बाप का साथ है और आपका संकल्प भी ऊंचे से ऊंचा है, तो उसका फल भी ऊंचे से ऊंचा मिलता है क्योंकि वो बेहद का संकल्प है। फिर बाबा ने कहा कि जो याद में रहते हैं वो निरंतर दाता बन जाते हैं, क्योंकि बाप के संग का रंग लगता है, बाप तो कभी किसी से लेता नहीं है। हाँ बाबा ये कहता है कि अपना पुराना सब कुछ दे दो, मैं करनी घोर, या फिर कहता है अपनी बुराइयां मुझे दे दो, विकार दे दो, ये तो बाबा मांगता है। तो बाबा कहते भगवान का मांगना भी देना ही है, क्योंकि वो आपसे जो कुछ मांगता है उसके बदले में आपको नया दिखता है, आपका कीचड़ पट्टी लेता है और आपको बदले में हीरे जवाहरात देता है, तो बाप कभी भी लेता नहीं। तो ऐसी बाप की याद में रहने वाले बच्चे भी सदा देवता बन जाते हैं, उनका नेचुरल संस्कार बन जाता है देने का। देना देना नहीं होता लेकिन लेना होता है, और लेना लेना नहीं होता लेकिन देना होता है, ये दुई गति है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं कि जिस चीज की कमी होती है पंडित लोग उसी का दान करवाते। जैसे एक राजा था, उसका खजाना खाली हो गया, तो उसने अपने राजगुरु को कहा कि मेरे खजाने में हीरे मोती सोना खत्म हो गया, मैं कंगाल हो गया, मैं क्या करूं। तो राजगुरु ने कहा महाराज आप ब्राह्मणों की एक सभा बुलाओ और सोने का दान करो। तो राजा कहता है सोना तो खजाने में है ही नहीं, जो खत्म हो गई उस चीज का दान कैसे करूं। राजगुरु ने कहा यही कर्मों की गहन गति है, जितना भी बच्चा है थोड़ा भी बच्चा है और थोड़े में भी थोड़ा आप दान करो। तो राजा ने सोना दान किया और कुछ समय के बाद राजा का भंडारा सोने से भरपूर हो गया। जैसे अपन एक दाना जमीन में बोते हैं, देने को तो अपने जमीन को एक दाना दान दिया, अपन ही मान ले। अपन गरीब है, खाने के लिए अपने पास अनाज नहीं है, फिर भी अपन ने पेट काट के बचाया और चलिए एक दाना कहो या एक मुट्ठी कहो अपन ने जमीन में डाला। तो जमीन ने क्या किया, एक के बदले एक नहीं दिया। एक बाजरा बो तो कितने बाजरे मिलते हैं, गेहूं बो, एक मटर बो, एक के बदले एक आम की गुठली बो, कितने सारे मैंगो बरस बरस मिलते रहते। प्रकृति कितना गुणा देती है। किसी ने हंसी हंसी में कहा था कि आजकल मनुष्य क्या करता है, मान लीजिए वो किसी के घर गया तो उस व्यक्ति ने उसको चाय पिलाई तो वो मन में सो लेता है, जब ये मेरे घर आएगा ना तब मैं भी इसको एक कप चाय पिला दूंगा, बस। तो मनुष्य इस प्रकार से फल देता है। लेकिन जमीन को देखो, एक के बदले हजार गुना, और एक बार बीज बोया तो जीवन भर कई पीढ़ियों तक देती रहेगी। इसलिए प्रकृति को माँ कहते हैं, देती है पर गिनती नहीं करती, दत्ता कहते हैं। और ऐसे ही प्रकृति के बाकी जो तत्व हैं, धरती है, आसमान है, सूरज है, इनको भी हम देवता कहते हैं, क्योंकि देते समय गिनती नहीं करते। मनुष्य तो गिनती करता है, छोट छोट बात की भी गिनती करता है, इसलिए उसने अपना देवता का टाइटल ही खो दिया। अब बाबा ने हमको फिर से दाता बनना सिखाया और फिर से बाबा हमको देवता का टाइटल दे रहे। बाबा ने कहा आपकी जन मूर्तियां मंदिर में जाकर के आप कभी देखो, उनको देख के भी आपको अपने स्वरूप की स्मृति आएगी। कैसा भी भगत हो, दानी हो, कंजूस हो, रोज याद करने वाला हो, कभी कभी याद करने वाला हो, लेकिन मूर्ति कभी भेद नहीं करती कि मैं इसको ज्यादा वरदान दूं, इसको कम दूं। वो अपनी एक रस अवस्था में रहती है और अपने शुद्ध वायुमंडल से मूर्ति भी पतितों को पावन बनाती है, गिरे हुओं को उठाती है। वो जड़ मूर्ति भी कमजोरों में बल भरती है, आशीर्वाद देती है। तो वो मूर्ति किसकी है? आप नहीं होते, मूर्ति कहाँ से आती? तो बाबा ने कहा वो आपकी मूर्ति है। तो जड़ मूर्ति अंतिम जन्म तक भी इतनी सेवा कर रही है, ये आपके कर्म का यादगार है। तो जैसे वो भेद नहीं करती, आप भी कभी मत सोचो कि इस व्यक्ति ने मेरे से बुरा किया था इसलिए मैं इसका भला नहीं कर सकता। बाबा ने कहा आप किसी के बुरे को बुरा समझते ही क्यों हो? अगर कोई खराब चीज आपको देता है आप लो ही मत, कोई गला हुआ फल देगा तो हम लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। कोई फटा हुआ टूटा हुआ कोई पदार्थ देगा तो हम लेंगे ही नहीं। तो दुख कब होता है? जब हम उसको ले लेते, और लेकर के हम दुखी होते हैं और फिर बदले में उसको दुखी करना चाहते हैं कि मैं भी इसको ऐसा ही दूंगा। तो पहले लो ही मत, व्यापार को वहीं खत्म कर दो, नहीं तो व्यापार लंबा चलेगा। खराब चीज ली नहीं जाती, उसकी खराब चीज लो मत और अपनी शुभ भावनाएं, अपनी शुभकामनाएं खूब दो, दाता बन करके देते जाओ। और बाबा ने यह भी कहा कि कई बच्चे एक छोटा सा फार्मूला भूल जाते हैं। फार्मूला ये है कि भगवान से लेना और आत्माओं को देना, ये है फार्मूला। कई बार बच्चे इस फार्मूले को भूल जाते हैं, वो आत्माओं से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्माओं के पास है ही क्या? अंतिम जन्म में सबकी बैटरी खाली है, सबके तन खाली, मतलब तन की शक्ति से अक्षीण। तो तन से हमारी क्या सेवा करेंगे? किसी का बीमार है, किसी का बुजुर्ग है। और बाबा ने मुरली में यह भी कहा था कि जो आज के बच्चे हैं उनकी शक्ति तो पहले वाले बुजुर्गों से भी कम है, और ही बुजुर्गों के तन में फिर भी ताकत है, पर आज की जो पीढ़ी है वो बहुत कमजोर है शारीरिक रूप से भी। सीढ़ी चढ़ेंगे तो हाँफेंगे, फिर कहेंगे हमारे सिर में दर्द है, हमारे पाँव में दर्द है। मन की शक्ति से भी खाली, क्योंकि बुजुर्गों में फिर भी सहनशीलता है, लेकिन जो आगे आगे की जनरेशन आ रही है उसका मन सूक्ष्म शक्तियों से खाली है। धन की शक्ति, बाबा ने कहा था धन है तो भी काला, अगर किसी के पास है तो, और फिर उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की नजर रहती है, तो धन से भी खाली। तो जो अंतिम जम की खाली आत्मा है वो भला आपको क्या देंगी? मान लीजिए हमारी गाड़ी खराब हो गई और सामने वाले की गाड़ी भी बैटरी डाउन है, वो हमारी गाड़ी को क्या मदद करेगी? खींच नहीं सकती। एक खाली बैटरी वाली दूसरी खाली बैटरी वाली की क्या मदद करेगी? मदद तो वो करे जिसकी बैटरी भरी हुई हो। तो बाबा कहते हैं पावर हाउस मैं हूँ, सागर मैं हूँ, दाता मैं हूँ, मेरे भंडारे कभी खाली नहीं होते, इसलिए मुझसे लो जितना लो, हमेशा निरंतर लेते रहो। लेकिन किसी भी मनुष्य आत्मा से लेने की इच्छा मत रखो। अगर आप इस एक फार्मूले को पक्का कर लोगे ना, तो जीवन में कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। फिर कभी किसी आत्मा से मिल भी जाए, मान लीजिए थोड़ा सा चुटकी भर, तो फिर उसमें भाव बैठ जाता है, तो बाबा ने कहा वो भी श्रीमत के विरुद्ध है। क्योंकि किसी आत्मा ने अगर आपको दे भी दिया तो कहां से दिया? बाप से लिया हुआ ही तो दिया ना। अल्टीमेट सोर्स तो बाप ही है ना। तो अगर कोई आत्मा कुछ आपको दे भी दे थोड़ा बहुत, तो भी लेते समय अंदर में ये स्मृति रखो कि दाता तो एक ही है, ये आत्मा भी मुझे उस दाता से लिया हुआ दे रही है। इसलिए किसी मनुष्य में भाववान नहीं हो जाओ, अपनी भावनाएं केवल एक बाप में ही रखो। बाबा ने कहा अगर संगम युग में आपका देने का खाता जमा होता जाता है, तो सतयुग और त्रेता में आप राजा बन करके उस खाते को यूज करेंगे, और द्वापर और कलयुग में आप उस खाते को यूज करेंगे पूज्य बन करके अपने भक्तों को वरदान देने में यूज करेंगे। तो अभी जितना हो जमा करते जाओ, दुनिया में इकट्ठा करने से जमा होता है, उल्टा है, और यहां देने से जमा होता है। एक मुरली में बाबा ने कहा था यूज करो नहीं तो लूज हो जाएगा। दुनिया में तो कहते हैं हमारे लोकर में इतना जमा है, इतना भरपूर है, यहाँ लोकर में नहीं रखना, यहाँ तो बांटना है, बांटने से बढ़ता है। और बाबा ने कहा कि जो दाता होगा उसको सब तरफ से सहयोग मिलेगा, प्रकृति भी मौके पे सहयोगी बन जाएगी। जैसे एक बार दादी गुलजार किसी प्रोग्राम में गई थी तो खूब तेज बरसात हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम ग्राउंड में गई, गाड़ी से नीचे उतरी, बरसात थम गई। बहुत अच्छे से प्रोग्राम हुआ, और प्रोग्राम पूरा होते ही जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, बरसात फिर से चालू हो गई। तो प्रकृति भी आपकी सहयोगी बन जाएगी। और एक बार किसी आत्मा से कोई मिस्टेक हो गई तो बहनों ने कहा कि दादी आप कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहते हो, आज तो इसने इतनी बड़ी गलती की है, आपको इसको कुछ कहना ही पड़ेगा, शिक्षा देनी ही पड़ेगी, सावधानी देनी ही पड़ेगी। तो दादी ने कहा ठीक है उसको मेरे पास भेजो। तो वो आत्मा दादी के पास गई और बहने तो देख रही थी, देखते हैं दादी क्या बोलती। तो दादी ने उसको मुस्कुरा के प्यार से ओम शांति की टोली खिलाई और फिर जाके बोला कि जाओ बाबा के कमरे में बैठो और अपनी गलती बाबा को सुनाओ, और भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, ये भी बाबा के आगे दृढ़ संकल्प करो। तो वो आत्मा खुशी खुशी गई बाबा के कमरे में। तो बहनों ने दादी को बोला दादी आपने उसको कुछ भी नहीं बोला, आप मुस्कुराते रहे, प्यार दिया, टोली खिलाई और बाबा के कमरे में भेज दिया। आपने एक बार भी कुछ उसको शिक्षा सावधानी नहीं दी। अब दादी ने बहुत सुंदर बात सुनाई। दादी ने कहा कि देखो, गलती कौन करती है? कमजोर आत्मा गलती करती है, जिसमें शक्ति नहीं। और उस कमजोर आत्मा को जब हम डांट देते हैं तो वो और ज्यादा कमजोर हो जाती है। व्यक्ति का परिवर्तन कब होता है? व्यक्ति का परिवर्तन तब होता है जब उसको शक्ति मिले। तो मैं उसको प्यार दूंगी तो उसको शक्ति मिलेगी, बाबा के कमरे में भेजा तो उसको शक्ति मिलेगी, वो खुद रियलाइज करेगा। कमजोर आत्मा को शक्ति देने का यही तरीका है। तो देखने में आता है कि कई बार हम भी इशारा कर देते हैं कि देखो ये व्यक्ति बदलता नहीं है, ये व्यक्ति, इसको बड़े भी कुछ नहीं कहते हैं, ये व्यक्ति इतना कुछ करता है। आधार केवल शुभ भावना और शुभकामना ही है, उसको अक्षमा करना ही उसके परिवर्तन का आधार। उसको मनसा शक्ति देना, मनसा में उसके लिए कल्याण की और उन्नति की भावना रखना। अगर ओम शांति,
का स्वर